Yoganandana Vrajaganarandana Yamadeva Vanatari Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radha Jaya Gaurani Tai, Gaurani Tai, Gaurani Tai, Jaya Gaurani Tai. Jaya Gaurani Tai, Gaurani Tai, Gaurani Tai, Jaya Gaurani Tai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur, Hari Gaur. Hari Nam Sankirtan Ki Jai Om Vishnupad Paramahansa Virasakacharya Shrutara श्री श्रीमद् भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की विदाय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 21 गिरम समाधो गगने समीरिताम् गिरम समाधो गगने समीरिताम् निसम्य वेदास्त्रिदशानुवासः गां पुरुषो मे शृणुतां मरा पुनः वीर्य माता सुत देव माचिराम गिरिं समादो गगने समीरिता निसंय वेदास्त्रिदशान वासः गां पुरुषि मे सुनताम वरा पुनः विधीर्यतामाशु तथैव माचिरा गिरं समाधो गगने समीरिता निशम्य वेदास्त्रिदशान वासः गां पौरुषि मे शृणुताम वरा पुनः विधीर्यतामाशु तथैव माचिराम
Gampar Shinesh
शब्द इस प्रकार है, गिरम शब्द की ध्वनि, समाधो समाधि में, गगने आकाश में, समीरिताम ध्वनि, निसम्य सुनकर, वेदा ब्रह्मा ने, त्रिदिशान देवताओं को, वाच कहा, ओह गाम आदेश, पौरुषिम परम पुरुष से प्राप्त, मैं मुझको, श्रुणुता सुनिए, अमरा हे देवताओं, पुनः फिर विधेयताम संपन्न करो, आशु तुरंत तथा एव उसी तरह, मा मत चिरम विलंब। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। भगवान ब्रह्मा ने समाधि में भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते हुए सुना। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष क्षीरोक्ताक्षायी विष्णु का संदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यानपूर्वक पूरा करो। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के शब्दों को सक्षम व्यक्ति समाधि में सुन सकते हैं। आधुनिक विज्ञान में हमें टेलीफोन प्रदान किया है कि जिसकी सहायता से हम सुदूर स्थान की ध्वनि सुन सकते हैं। उसी तरह यद्यपि अन्य लोग भगवान विष्णु के शब्दों को नहीं सुन सकते किंतु भगवान ब्रह्मा जी अपने अभ्यंतर में भगवान के शब्दों को सुन सकते हैं। उसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही एक में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय के द्वारा हुई है। आदि कवि भगवान ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में अपने हृदय में हृदय के माध्यम से हृदय भगवान विष्णु से वैदिक ज्ञान का आदेश प्राप्त किया। यहाँ इस सिद्धांत की पुष्टि हुई है कि ब्रह्मा ने समाधिस्थ अवस्था में क्षीरोक्ताक्षायी विष्णु के शब्द सुने और भगवान के संदेश को देवताओं तक पहुँचाया। उसी तरह ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में अपने हृदय में हृदय के भीतर भगवान के वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। दोनों ही अवसरों पर भगवान ब्रह्मा तक संदेश ले जाने में एक ही विधि प्रयुक्त हुई। दूसरे शब्द में यदि भी भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को भी नहीं देख रहे थे किंतु वे अपने हृदय के माध्यम से भगवान विष्णु के शब्द सुन सके। भगवान श्री ब्रह्मा तक को नहीं दिखते फिर भी वे इस धरा पर अवतरित होते हैं और सामान्य जनता को दृष्टिगोचर होते हैं। यह उनके अहेतुक कृपावश ही होता है किंतु मूर्ख या अभक्त यही सोचते हैं कि कृष्ण सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति है। चूँकि वे भगवान को अपने ही जैसा सामान्य व्यक्ति सोचते हैं इसलिए उन्हें मूढ़ कहा गया है और जानन्ति माम मूढ़ा। ऐसे असुरगण को भगवत गीता के उपदेश को नहीं समझ पाते और जो इसलिए उन उपदेशों की गलत व्याख्या करते हैं वे भगवान की अहेतुक कृपा की उपेक्षा करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवांश श्रीरूपं सार्वजातं सगण रघुनाथानितं सं सजीवम्। सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानंद सुते देवी हनुमानी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जय श्री श्री राधा की तरी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। विरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य वेदास्त्री दशानुवास माम पौरुषो मे सुनताम अरम पुनः विदर्यताम माशु तथेव मा चिरम। तो प्रसंग हम सब भक्त जानते हैं जो क्रम के अनुसार चल रहा है इस भागवत का। दशम स्कंद प्रारंभ हो गया है। श्री भगवान कृष्ण की कथा सुनने के इच्छुक श्री परीक्षित महाराज की लालसा से सुखदेव गोस्वामी सुना रहे। निवृत्त तर से उपी गए मानात भवाव सोदी स्रोत मनोभिरामा। जो निवृत्त लोग है जो इस भौतिक तृष्णा से जो निवृत्त हो गए ऐसे लोगों को भी आनंद देने वाला या गायन करने वाला ये कृष्ण कथा है। और भवा औषधि जो भव रोग में फंसे हुए लोगों को औषधि समान ये कृष्ण कथा है। इसी तरह परीक्षित महाराज की लालसा देखकर सुखदेव गोस्वामी इस कृष्ण कथा का प्रारंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं कि एक समय पृथ्वी देवी आक्रांत पूरी बारण्य ब्रह्मणम शरणम ये जो आक्रांत होकर रोते रोते हुए श्री ब्रह्मा जी के शरणों में गई पृथ्वी देवी जो गाय का रूप लेकर इस भौतिक जगत में इस धराधाम पर असुरों का बहुत अत्याचार बढ़ गया तो वो सहन न कर सकी पृथ्वी और सहन न करते हुए रोते रोते हुए श्री ब्रह्मा जी के शरणों में गई और अपना निवेदन किया। इस तरह इस जरा दाम मेरे ऊपर जो अत्याचार हुआ है खास करके जो असत्य का भी प्रचार हो रहा है चलता है वो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो इस तरह प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी देवी गई गाय का रूप लेकर। तो इस प्रसंग को हम सुनते आ रहे हैं तो पिछले हम नव मासकंद में सुने सूर्य वंश और सोम वंश में जो अनेक राजाओं हुए उसमें सत्ययुग में जो रेवत नाम के राजा हुए रेवत के पुत्र था कुकुदमी। कुकुदमी के एक पुत्री थी सुंदर अतिशय सुंदर थी वो कन्या। तो उस कन्या का विवाह करने के लिए कुकुदमी इस पृथ्वी पर ढूंढ रहे थे उनके योग्य पति लेकिन उनको दिखाई नहीं दिया जितनी सुंदर थी वो उनकी कन्या। तो उसको उसका योग्य उनको पति देख नहीं पा रहे थे वो कुकुंदमी उनको ऐसा उनको योग्य पुरुष या पति के रूप में उनको योग्य कोई पुरुष उनको दिखाई नहीं दिया इस सारे पृथ्वी में। तब वो कुकुंदमी अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में। तो वहाँ जाकर बैठे उस सभा में तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के गुणगान सुन रहे थे, तो सुनते वो भी सुनने लगे कुकुद में अपने पुत्री के साथ। तब थोड़ा समय चला गया, फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि कुकुदमी महाराज आए हैं, तो वो बताए कि किस प्रयोजन से आप इधर आए हैं। तब कुकुदमी ने निवेदन किया कि मेरी पुत्री जो अति सुंदर है, उनके योग्य पति आपने विधाता इसके लेख में कौन सा पुरुष का जो लिखा है वो बताइए, मुझे तो पृथ्वी पर उसका कोई योग्य पुरुष दिखाई नहीं दे रहे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसी समय आप जाइए, आप तो आए हो, बहुत समय बीत गया, क्योंकि हमारा समय का गणना और ब्रह्मलोक के समय का गणना के अनुसार उधर थोड़े क्षण रुके थे, लेकिन यहाँ का युग परिवर्तन हो गया था, सतयुग में गए थे लेकिन द्वापर अंत आ गया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप अब तुरंत जल्दी जाइए और इधर ब्रजमंडल में जो ब्रज वृंदावन है उसमें बलराम करके जो कृष्ण के साथ अवतरण हुए उनके साथ अपनी पुत्री रेवती का विवाह कीजिए। तो प्रश्न ये उठता है, इस प्रसंग से हम देखते हैं कि पृथ्वी जब गई ब्रह्मा जी के पास तो कहाँ गए? ये बात तो द्वापर के अंत में हुई ना पृथ्वी, और जो सतयुग में उधर गए थे कुकुंद में जो अपने पुत्री को लेकर, तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में दोनों का भेंट होना चाहिए, लेकिन भेंट नहीं हुआ। उधर पृथ्वी देवी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास गई और कुकुदमी अपने पुत्री को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, तो दोनों का ब्रह्मलोक में भेंट होना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए, लेकिन उधर मिला नहीं क्योंकि वो सतयुग में गए थे और द्वापर अंत में, तो बीच में तो पुत्री का गौ माता पृथ्वी का निवेदन हो गया, फिर बाद में कृष्ण अवतार होते हैं उनके निवेदन से, तो फिर बाद में द्वापर के अंत में कृष्ण का अवतार और बलराम का अवतार होता है। तो पृथ्वी जी कहाँ गए ब्रह्मा जी के पास? तो उस प्रसंग को लेकर आचार्य लोग कहते हैं कि जो पृथ्वी देवी गए वो ब्रह्मलोक में नहीं गए, सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास नहीं गए। पृथ्वी गई और सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का एक ऑफिस है जहाँ से वो सारा ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, उसी स्थान पर पृथ्वी देवी गई थी, ब्रह्मलोक में नहीं। अगर ब्रह्मलोक में जाती तो वहाँ उनका भेंट होता, लेकिन पृथ्वी देवी, इससे मालूम होता है कि ब्रह्मा जी भी अपना विस्तार करके ये ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। एक ब्रह्मा जी जो भगवान कृष्ण के नित्य गुणगान ब्रह्मलोक में गाते हैं और सुनते हैं, और उनका विस्तार ब्रह्मा और कुछ जो इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, जिनका ऑफिस है सुमेरु पर्वत पर, वहाँ पूरा ये ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, और जिसको कोई भी कष्ट होता है तो उधर जाते हैं। सतलोक में ब्रह्मा जी जो कृष्ण का गुणगान सुनते हैं वहाँ नहीं जाते, तो वहाँ जाते हैं जहाँ सुमेरु पर्वत होता और जहाँ उनके ऑफिस है वहाँ से वो निवेदन करते हैं, फिर बाद में उनका समाधान होता है। तो इसी तरह इस प्रसंग से जो पृथ्वी गए और ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और शिव जी के साथ लेकर अन्य देवताओं इंद्र के साथ सब लोग मिलकर सब देवताओं और शिव जी के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुँचे पृथ्वी देवी, ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवताओं। वहाँ पुरुष सूक्त नाम की स्तुति की जो वेद शास्त्र में है, पुरुष सूक्त सूत्र का स्तुति की जो देवता उस स्तुति को भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो उच्चारण करते हैं, तो स्तुति की सभी देवताओं ने फिर प्रसन्न नहीं हुए भगवान। फिर बाद में ब्रह्मा जी समाधि में बैठ गए, जब समाधि में बैठे और भगवान से प्रार्थना करने लगे तब भगवान ने इस आकाशवाणी की। तो आकाशवाणी दो प्रकार की होती है, हम अन्य प्रसंग में देखते हैं जब वसुदेव जी और देवकी का विवाह होकर जा रहे थे रथ में, तो कंस के द्वारा वो चला रहे थे रथ, तब भी आकाशवाणी हुई थी देवताओं द्वारा। जो उस आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी सभी लोगों ने सुना था वहाँ जो थे सभी ने, और इस नवम स्कंद में हम वो और एक आकाशवाणी सुनते हैं दुष्यंत के, जो उनके पुत्र था भरत, उनकी संकुंतला वो गई थी उधर उनके पास कि आपका ही पुत्र है, लेकिन दुष्यंत स्वीकार करने से मना किया, तभी आकाशवाणी हुई थी। उस देववाणी को सभी लोगों ने सुना, लेकिन जो इस आकाशवाणी हुई उसको और किसी ने नहीं सुना सिवाय ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के दायरे हृदय में वो बात या आकाशवाणी गई। तो इसी तरह वो फिर बाद में ब्रह्मा जी श्लोक को उच्चारण करते कि भगवान विष्णु के द्वारा जो मुझे आदेश मिला है उसी आदेश को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आप शीघ्र ही शीघ्र विलंब किया बिना ये देवताओं ये अमरों जो आपका मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं होने का कारण अमर अमर शब्द कहते देवताओं को ब्रह्मा जी। अमर वास्तव में अमर शीर्षाही अमर नहीं है, वो नित्य नहीं है। अमर का मतलब है उनकी इच्छा अनुसार वो जीवित रहते, लेकिन जब उनका पुण्य उनका क्षीण पुण्य मृत्यु लोक विसंति जब उनका पुण्य का क्षण हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, तब तुरंत वो इस भौतिक जगत में आते हैं। हमारी तरह उनका अचानक मृत्यु कहीं नहीं होता है, जब तक उनका पुण्य रहता है तब तक वो जीवित रहते हैं, इसलिए उसको अमर कहा जाता है। और साथ साथ में वो अमृत का पान किए हुए हैं इसलिए भी उसको अमर कहते हैं। इसी तरह इस देवताओं को अमर कह के संबोधन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप शीघ्र विलंब मत करो और आप जो भगवान ने आदेश दिया उसका पालन करो। तो इस प्रसंग को जो इस पृथ्वी देवी का जो प्रसंग चल रहा है हम सुनते आ रहे हैं, विस्तार रूप से महाभारत और विष्णु पुराण में भी हुआ है इस प्रसंग का वर्णन। और साथ साथ में इसी भागवत में दूसरे स्कंध में सातवें अध्याय में और 26 नंबर श्लोक में भी इसका कुछ पुष्टि हुई है। जब ब्रह्मा जी नारद मुनि को भगवान के अवतार का वर्णन करते हैं, तब वर्णन करते करते जब भगवान कृष्ण और बलराम का वर्णन होता है, तब ब्रह्मा जी कहते कि भूमे सुरेर तर पुरुष विदत्मितया क्लेश व्याय कलया चित कृष्ण केश जात कृषि जन अनुलक्षितम मार्ग क्रमाणि स आत्म महिमा। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंध सातवां अध्याय 26 नंबर का श्लोक है ये। तब ब्रह्मा जी कहते कि इस पृथ्वी पर भार बढ़ गया, तब पृथ्वी देवी गाय का रूप लेकर गए भगवान विष्णु के पास और विष्णु के पास जाकर उसने निवेदन किया, तब कृष्ण का और बलराम का अवतरण हुआ। तो उसमें एक शब्द आया है शीत कृष्ण केश जात, शीत कृष्ण केश जात, इस शब्द को लेकर महाभारत और विष्णु पुराण में भी इस बात उठी है। तो उसमें भी इस प्रसंग को लेकर कहते हैं महाभारत में, तो तयोरेको बलभद्र वभुह यो यशो श्वेतस्य देवस्य केश कृष्ण द्वितीय केशव संभव केश योसो वर्णित कृष्ण युक्त। केश शब्द महत्वपूर्ण है इस दूसरे अध्याय के श्लोक में और इस महाभारत और विष्णु पुराण के श्लोक में। तो लोक व्यवहार में हम देखते हैं, प्राय लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु से ही सभी अवतार आते हैं। तो महाभारत और विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है ऐसा ही कि जब ये पृथ्वी देवी और ब्रह्मा जी और सब देवता हो गए क्षीर सागर के तट पर, तब इस विष्णु क्षीरसाई विष्णु है उनके बाल से एक सफेद बाल वो निकाला और एक काला बाल निकाला, जो बलभद्र श्वेतस्य यानी कृष्ण द्वितीय दो बाल कृष्ण मतलब काला बाल वो दो निकाला, उससे कृष्ण और बलराम प्रकट हुए। क्षीरसाई विष्णु से क्षीरोदकसाई विष्णु के बाल से केश से एक काला कृष्ण और गोरा बलराम उत्पन्न हुए, ऐसा वर्णन है श्रीमद् महाभारत और विष्णु पुराण। तो ये इसी को ये बात लेकर सारे विश्व में या पृथ्वी पर व्यवहार में होता है कि विष्णु का अवतार ही कृष्ण और बलराम, सभी अवतार विष्णु से आता है, सब लोग प्राय इसी व्यवहार को चलाते हैं। और ये बात भी सत्य है कि ये महाभारत की वाणी है, विष्णु पुराण की वाणी है। प्रभुपाद ने इस ग्रंथ को कई जगह पर कोट किया है, विष्णु पुराण का श्लोक और महाभारत का श्लोक, ये ग्रंथ भी व्यास देव द्वारा रचित है, तो कोई गलत नहीं है। लेकिन इसी बात को स्पष्ट करने के लिए श्री जीव गोस्वामी सर संदर्भ में कृष्ण शब्द कृष्ण संदर्भ नाम के ग्रंथ में विस्तार रूप से वर्णन किए हैं। नहीं, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, इसके अलावा सारे जो अंश है सभी अंश विष्णु या कोई भी हो सब उनके ही विस्तार है। तो इस कृष्ण संदर्भ ग्रंथ में श्री जीव गोस्वामी विस्तार रूप से वर्णन इस बात को प्रस्तुत करते हैं और ऐसा कहते हैं कि जो लोक व्यवहार में जो चलता है वो उचित नहीं है, वास्तव में जो प्रसंग है वो इसी प्रकार है। तो इस प्रसंग को श्री जीव गोस्वामी रखते हैं श्री कृष्ण संदर्भ में, जो सर संदर्भ है जो जीव गोस्वामी द्वारा रचित है। जब रूप गोस्वामी एक विद्वान ब्राह्मण आए थे उनके पास, जो दिग्विजय था, तो रूप गोस्वामी पास आकर कहे कि मुझे आप अपना विद्वत्ता दिखाए या आप मेरा ये पत्र है उसमें आप साइन कीजिए कि मैं ही दिग्विजय हूँ, मुझसे आप हार गए। तब रूप गोस्वामी को ऐसा कोई स्थान है अपने मान प्रतिष्ठा को तो नम्र थे, तो उसने तुरंत साइन कर दिया कि मैं आपसे हार गया हूँ, आप दिग्विजय हैं, आप पूरे विश्व में आप विद्वान हो। तो रूप गोस्वामी ने उस साइन कर दिया और वो चले गए। तब रूप गोस्वामी के बाद जीव गोस्वामी उधर साथ में थे रूप गोस्वामी के, तब रूप गोस्वामी ने उनको थोड़ी देर तक छोड़ दिया। तब जीव गोस्वामी उनके साथ गए उस विद्वान ब्राह्मण के साथ, तब उनके साथ तर करके उनको हरा दिया जीव गोस्वामी ने, और हरा दिया और परास्त करके वो कागज था फाड़ दिया जीव गोस्वामी ने और ब्राह्मण चला गया। तब उस बात को रूप गोस्वामी को पता चला कि तो विद्वत्ता दिखाई जीव ने जो, और बुलाया कहा कि हम इधर व्रज में आए हैं विद्वत्ता दिखाने के लिए नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए आए हैं, विद्वत्ता दिखाने के लिए। आप अभी हमको मुँह मत दिखाई, आप दूर हो जाए हमसे, आपको विद्वत्ता दिखाई नहीं है तो व्रज छोड़कर बाहर जाइए। तो इस रूप गोस्वामी को इस अवसर को रूप जीव गोस्वामी उस व्रज को छोड़कर चले जाते हैं और गोवर्धन के तड़पी में आकर इस सर संदर्भ का रचना करते हैं, जो इस सर संदर्भ गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा रचित था पहले से, लेकिन वो क्रम के अनुसार या कुछ टूटी फूटा हुआ प्रसंग था, पूरा क्रम के अनुसार नहीं था सर संदर्भ। फिर जीव गोस्वामी ने 6 महीना तक उस सर संदर्भ का रचना किया पूर्ण रूप से अभी विस्तार से और क्रम के अनुसार। तो इसी सर संदर्भ के कृष्ण संदर्भ नाम के ग्रंथ में इस बात को पूर्ण रूप से खंडन करते हैं श्री जीव गोस्वामी कि नहीं, वास्तव में कृष्ण पूर्ण परिषदम परमेश्वर है। कि श्री भागवत में भी कहा है कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्णस्तु स्वयं भगवान पहले स्कंद में कहा गया है। तो जब कृष्ण स्वयं भगवान है तो विष्णु के अवतार कैसे होता है, विष्णु से अवतार यह संभव नहीं है। तो इस बात को पुष्टि करने के लिए जीव गोस्वामी एक प्रसंग रखते हैं इसी 10वें स्कंद के निवासी अध्याय में, जो द्वारका लीला में घटना घटित हुई, 10वां स्कंद निवासी अध्याय 89 अध्याय में एक प्रसंग है। जो द्वारका में एक ब्राह्मण रहता था, उस द्वारका में ब्राह्मण रहता, उनकी पत्नी को एक बालक का जन्म हुआ और बालक का जन्म होते हुए पृथ्वी पर स्पर्श होते हुए बालक का मृत्यु हो गया। तो मृत्यु होने के साथ वो तो ब्राह्मण भयभीत हो गया, ऐसे कैसे हुआ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, जब तक राजा सत्य राजा है, धर्मनिष्ठ राजा है तो प्रजा को ऐसा दुख नहीं होना चाहिए कभी। तो बहुत भयभीत होकर और रुदन करते हुए वो सुदर्शन सभा में पधारे, जहाँ भगवान कृष्ण की सभा लगती है, उग्रसेन महाराज राजसिंहासन पर बैठे हैं, उस सभा में उस ब्राह्मण उस बालक को लेकर आए कि ऐसे कैसे हुआ। निश्चित रूप से इस घटना से पता चलता है कि राजा धार्मिक नहीं है, वो धर्मनिष्ठ नहीं है, सत्यपारायण नहीं है। अगर सत्यपारायण और धर्मनिष्ठ होता तो ऐसा प्रसंग कभी नहीं होता कि सब जनते ही बालक का मृत्यु होता। तब उस सभा में भगवान कृष्ण बैठे थे, बलराम बैठे थे, अनिरुद्ध प्रद्युम्न सभी बैठे थे उस सुधर्म सभा में, पर कोई कुछ नहीं बोला। और ब्राह्मण विलाप करते करते और उग्रसेन महाराज को कई बातें सुनाकर रोते रोते फिर से चला गया। फिर जाकर 1 साल और बीत गया, फिर दूसरा उसकी पत्नी को दूसरा बच्चा हुआ, तो उसका भी ऐसे ही हालत हुआ, पृथ्वी पर स्पर्श होते ही उसका मृत्यु हो गया। और फिर से आए ब्राह्मण उस सभा में और बोलने लगे ऐसे ही, ऐसे कैसे हो रहा है कि राजा धर्मिष्ठ नहीं होते तभी ऐसा होता है, अगर धर्मिष्ठ राजा होता तो ऐसा कभी घटना घटित नहीं होती। और बहुत बातें सुनाते हैं, 10वां स्कंद विस्तार से वर्णन है उसका। तो फिर चला जाता है वो ब्राह्मण रोते रोते। इसी तरह नौ प्रकार, नौ बार उनका बच्चा होता है और मृत्यु होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नौ पुत्र का मृत्यु हो जाता है। और जब नौवीं बार आता है, आठ मृत्यु के बाद नौवीं बार जब आता है वो उस मृत्यु पुत्र को लेकर उस सभा में, तो उसी सभा में आकर वो कई बातें ऐसे बोलने लगा, फिर जैसी तरह पूर्व बोल रहे ऐसे, आप सत्यनिष्ठ नहीं है, आप धर्मनिष्ठ नहीं है, आप पापी है, और आप सत्ता बढ़ाने के लिए सैनिकों को मारते हैं, ऐसा बहुत सारे उग्रसेन महाराज और कृष्ण भगवान और सब सुन रहे थे ऐसे। तभी उसी प्रसंग उस सभा में अर्जुन भी आए हुए थे, तो अर्जुन को यह बात सहन नहीं हुई जो ब्राह्मण के बाद, और अर्जुन बीच में बोल दिए कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं इधर हूँ, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूँगा अगली बार, अगर मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया और मेरा वचन झूठा साबित हुआ तो मैं अग्नि में प्रवेश करके मैं अपना आत्महत्या कर दूंगा। तो वो ब्राह्मण जानते थे कि वो ब्राह्मण कहे कि इधर वासुदेव है, शंकरचरण साक्षात शंकरचरण है, बलराम जी है, अनिरुद्ध प्रद्युम्न सब है, वो रक्षा नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे, अर्जुन को कहा। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं गांधीधारी अर्जुन हूँ, जो शिवजी ने मुझे पशुपत अस्त्र दिए हैं, मैं उनसे रक्षा करूंगा आपकी पुत्र की, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, अगर अगली बार ऐसा हुआ और मेरा वचन झूठा हुआ तो मैं अग्नि में प्रवेश करके मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। तब ब्राह्मण को कुछ आश्वासन मिला और वो घर गए, और घर गए और समय बीतते बीतते एक साल बीत गया, फिर उनको पत्नी गर्भवती हुई, तो अर्जुन को समाचार भेजा, पत्र भेजा कि मेरे पति गर्भवती हुई है, उनकी रक्षा कीजिए। तब अर्जुन हमने तीर से पशुपति अस्त्र से पूरे उनके प्रसिद्ध ग्रह थे उसको बाण से घेर दिया, पूरा कवच बना दिया उस स्थान को, प्रसूति ग्रह को, और उस ब्राह्मण पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, और सभी ने उनकी आवाज़ सुनी, पुत्री को पुत्र का आवाज़ सुनते सुनते थोड़ा देर आवाज़ रोने का आवाज़ सुना, फिर बाद में आवाज़ भी बंद हो गया और पुत्र भी नहीं मिला। हर बार तो पुत्र मृत पुत्र का शरीर पड़ा हुआ था, इस बार तो पूरा पुत्र ही गायब हो गया। तो पुत्र गायब होने के बाद फिर वो ब्राह्मण आया तुरंत उस सभा में, अर्जुन जहाँ बैठे थे वहाँ, और जोर जोर से बोलने लगा अर्जुन को, आप बड़ा कह रहे थे गांधीधारी है, आपके पास शिव जी का धनुष है, वो रक्षा करेंगे, हर बार तो मेरा मृत पुत्र का शरीर प्राप्त होता था, इस बार तो शरीर भी प्राप्त नहीं हुआ, अभी आप रक्षा कैसे किया मेरा पुत्र का, निश्चित रूप से आपका वचन झूठा हुआ है। तो अर्जुन तो ढूंढने लगे उन पुत्र, कैसी है इस घटना घटी, इतना कवच लगाया था शिव जी के बाण से, पशुपात अस्त्र था उनसे, फिर भी रक्षा नहीं हुई उस पुत्र की। तब अर्जुन ऊपर के लोक में जाने लगे, ब्रह्मा तक गए, वहाँ वो पुत्र नहीं मिला, फिर पाताल तक गए, सातों लोग पाताल तक, सातों लोग सौदा लोक में परिभ्रमण अर्जुन ने किया, लेकिन पुत्र का पता नहीं चला। तब फिर से आकर द्वारका में आए और भगवान कृष्ण जो सभा में बैठे थे वहाँ, अर्जुन ने कहा पुत्र तो मिला नहीं, अभी निश्चित रूप से मैं यज्ञ में अपना अग्नि में मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, अग्नि समाधि लेकर मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा। जब वो तैयारी करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं रुको, चलो मेरे साथ। तब भगवान कृष्ण दिव्य रथ के ऊपर चढ़कर और अर्जुन को साथ लेकर जाते सीधा इस लोक को, ब्रह्मलोक को पार करके शिरोपदक्षाई विष्णु जहाँ निवास करते हैं श्वेत द्वीप में, उस आवरण को भेद करके रथ में जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाते जाते जब इस ब्रह्मांड का आवरण पार करते हैं तो वहाँ बहुत अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के कारण उनके जो रथ का घोड़े थे वो दिशा विहीन हो जाते हैं। तब भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र से वो उसको वहाँ प्रकाशमान करते हैं, तो प्रकाशमान करते हुए उस श्वेत द्वीप में पहुँचते हैं, और श्वेत द्वीप में पहुँचते ही जहाँ यक्ष विष्णु जो विष्णु वहाँ विराजमान थे अनंत शेष के ऊपर, तो वहाँ भी इतना वैभवशाली उनका निवास स्थान है, जहाँ शेषनाग के मणि मस्तक ऊपर कई मणि प्रकाशमान थे, और अर्जुन और कृष्ण वहाँ जाकर प्रणाम किए, तो प्रणाम करते हैं तो उस स्थान पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो साक्षात कृष्ण है तो विष्णु को प्रणाम क्यों किए। उस बात को निवारण करते हुए कहते हैं कि जिस तरह गोवर्धन धारण किया भगवान कृष्ण ने, तो साक्षात वो जो अन्न भोग लगाए थे अंकुट वो ग्रहण कर रहे थे, एक रूप से वो गोवर्धन के रूप में थे और एक रूप में वो प्रणाम भी कर रहे थे कृष्ण जो साक्षात थे वो, और एक रूप में तो गोवर्धन जो अंकुट भोग लगाया हुआ तो वो ग्रहण भी कर रहे थे। तो इसी प्रकार इधर भी वो लीला करने के लिए वो प्रणाम किए विष्णु को। तो इस प्रणाम अर्जुन ने और भगवान कृष्ण का, तब विष्णु जो शुक्लदक्ष विष्णु है उसने कहा, वो 89 नंबर अध्याय में 58 नंबर श्लोक में कहते हैं कि द्विज आत्मजा में द्विजो दिदीक्षणा मयत निता। द्विज आत्मा जो द्विज के पुत्र थे द्विजो मैं उनको लाया हूँ। क्यों लाए हैं? दिदीक्षणा मैं आपका दर्शन करने के लिए उनको लाया हूँ, कि मुझे मालूम था कि अगर मैं उस ब्राह्मण के पुत्र को यहाँ तक मेरे पास ले आऊँगा छुरा कर, तो उनको छुड़ाने के लिए निश्चित रूप से आप आएंगे और आपका मुझे दर्शन होगा। तो इनके दर्शन के लालसा से बात सिद्ध होती है कि वास्तव में कृष्ण स्वयं भगवान है। बाकी सब और साथ साथ में ये भी कहते हैं कि विष्णु भगवान, कि मैं तो आपकी कला का अंश का अंश हूँ, तृतीय अंश हूँ, क्योंकि कर्णदक्षाई विष्णु, फिर बाद में गर्भदक्षाई विष्णु, फिर बाद में तृतीय अंश है शिरोदक्षाई विष्णु, तो मैं तो आप तृतीय अंश हूँ, इसलिए आपका दर्शन करने के लिए मैं इस पुत्र को, मैं ब्राह्मण पुत्र को यहाँ लाया हूँ सूर्य के। फिर बाद में और विशिष्ट श्लोक के दूसरी लाइन में कहते हैं वही कला अवतीर्ण अवय में भार असुरान हत्वा यह भूय तारिया यतम अंतिमे। फिर वहाँ विष्णु भगवान कहते हैं कि कला अवतीर्ण, मेरी कला से आपका अवतार हुआ है और पूरी भूमि पर भार उतारने के लिए आप असुरों का संहार करते हैं, पर संहार करके तुरंत ही मेरे पास आ जाओ। तो इस बात को ये दोनों एक ही श्लोक है, लेकिन दोनों पंक्ति में विरोधाभास दिखता है। पहले कहते हैं कि मैं आपका दर्शन करने के लिए पुत्र को लाया, फिर बाद में कहते हैं कि आप ही मेरा कला का अंश, इसलिए आप भूमि पर असुरों को मारकर तुरंत उनको मेरे पास चले आए। लेकिन इस बात का निवारण करते श्रीधर स्वामी कि जो कहते हैं वो कला अंश, जो कला अंश कहते हैं वो वास्तव में वो नहीं है, भगवान कृष्ण का कला अंश वो विष्णु है। और विष्णु कहते हैं कि आप तुरंत सभी राजाओं को, जो असुर राजा है, जो असुर है उनको हत्या करके तुरंत मेरे पास भेज दो, क्योंकि आप हतारी दायित्व है, आप उनको मारकर वध करके उनको मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, तो मुक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरे पास आने से उनको मुक्त हो जाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी अपना कार्य शीघ्र समाप्त कीजिए और अपने धाम को वापस जाइए। तो इसी बात को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। तो इस प्रसंग को सुन पूरा करके फिर बाद में उस ब्राह्मण पुत्र को लेकर अर्जुन और श्री कृष्ण फिर से द्वारका में आते हैं, और द्वारका में आकर उस ब्राह्मण को पुत्र द्वारका में आते समय अर्जुन विस्मय, फिर इसी अध्याय में 62 नंबर श्लोक में अर्जुन सोचते हैं कि निसम्य वैष्णव धर्म पार्थ परम विस्मित यत किंचन पौरुषम पुंस यते कृष्णानु अनुकंपितम। अर्जुन विस्मित हो गए कि विष्णु अगर ब्राह्मण पुत्र को यहाँ लाया है तो क्या इस विष्णु द्वारका में आकर दर्शन नहीं कर सकते थे? क्या विष्णु को अनुमति नहीं थी, भगवान कृष्ण अनुमति नहीं दिए दर्शन करने के लिए? और साथ साथ में ये भी सोचने लगे कि भगवान विष्णु तो ब्राह्मण के पुजारी है, ब्राह्मण को सम्मान देते, फिर ब्राह्मण को इतना कष्ट क्यों दिया? सोचते सोचते फिर बाद में कहते हैं कि अर्जुन ऐसे सोच रहे, विस्मित हो गए अर्जुन, फिर बाद में कृष्ण को पूछ लिए कि ऐसा कैसे हुआ कि आप होते हुए और उनका दर्शन नहीं देने का था, क्या था इसका रहस्य, क्या है? तब उनका निवारण भी श्री जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कि वास्तव में अगर तो उनको दर्शन देना था भगवान कृष्ण को, तो पहले पुत्र को ही देने के लिए वो जाकर दर्शन देते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। और साथ साथ में ये भी कहते हैं कि मैं अगर चाहूँ तो उनको दर्शन तुरंत दे सकता था, और अगर मेरी इच्छा है तो वो भी आकर मेरा दर्शन पा लेते। लेकिन अर्जुन को थोड़ा गर्व हो गया था हमने गांडीव के ऊपर, और वो जानते थे सुधर्म सभा में जो बैठे हुए हैं साक्षात बलराम जी है, भगवान कृष्ण है और अनिरुद्ध प्रद्युम्न, वो सब थे, और वो कुछ नहीं बोले। वो ब्राह्मण जब बोल रहे थे अर्जुन तुरंत खड़ा होकर कहते मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। अगर रक्षा ही करना था तो कृष्ण नहीं कर सकते थे, बलराम नहीं कर सकते थे, अनिरुद्ध प्रद्युम्न वो सब थे, वो नहीं करते। लेकिन वो नहीं किए, वो अर्जुन खड़ा हो गया, क्योंकि अर्जुन को थोड़ा बीमार हो गया था। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं चाहता तो ब्राह्मण पुत्र प्रथम पुत्र में उनका दर्शन देता, लेकिन तुम्हारा जो गर्व अहंकार थोड़ा हो गया था, वो अहंकार को सूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए उनका नव पुत्र का जो हुआ ये घटना, तो तुम्हारा अहंकार को नष्ट करने के लिए मैं इस तरह कार्य संपन्न किए। तो इसी प्रसंग को लेकर श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। कृष्णस्तु स्वयं भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराजि गोविंद सर्व कारुणा कारण। कृष्ण ही सर्व कारण के कारण है, अन्य कोई नहीं। उनके सब जो है विस्तार है, बाकी मूल कृष्ण ही भगवान स्वयं है। इस बात को सत्य करने के लिए जो लोक व्यवहार में है उस बात को खंडन करने के लिए जीव गोस्वामी कृष्ण संदर्भ में पूरा विस्तार से इस प्रसंग को रखे है। शुरुआत प्रथम अध्याय में तो कृष्ण ही वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। तो हम बड़े सौभाग्य हैं कि प्रभुपाद की कृपा से इस बात का हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि, और परंपरा से हमें ये भी अवसर प्राप्त हुआ कि डायरेक्ट कृष्ण का ही हम भक्ति करते हैं भी, और भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनकी परंपरा से हमें ये ज्ञान हुआ है कि वास्तव में जो कृष्ण ही मूल है उनका ही भजन सर्वश्रेष्ठ है। वैसे ही देखा जाए तो विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, पर वास्तव में जो भाव और रस और संबंध के बारे में देखा जाए तो कृष्ण से व्यक्ति या जीव का संबंध हो सकता है। अगर कोई चाहे कि मुझे मित्र बनना है विष्णु का या राम का, तो नहीं बन सकते, क्योंकि वो प्रभाव वैभवशाली है, ऐश्वर्यवान है राम, भगवान राम, उनके सखा नहीं बन सकते। लेकिन कृष्ण के साथ वो सखा राम बनते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके कंधा पर चढ़ते हैं, राम के कंधा पर कोई नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि कृष्ण ही भाव और संबंध के बारे में जो मूल रूप है, तो कृष्ण का वास्तव जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जो विस्तार से वर्णन है सनातन गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो इस बात को हमें गर्व हुआ है कि प्रभुपाद की कृपा से हमें इस ज्ञान हुआ है, और इस परंपरा के अनुसार हमें इस भगवान कृष्ण को का भजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो वहाँ वास्तव में सुकृतिवान जो बहुत बहुत जन्मों के बाद जो जिनका सुकृति एकत्रित होता है, उनको ही ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि डायरेक्ट भगवान कृष्ण का भजन करने का, उनकी सेवा करने का, और ऐसे वैष्णव और ऐसी आचार्य परंपरा में उनका संबंध होता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण का शरण में, और उनकी एक कथा भी प्रारंभ हुई है जो कल विश्वरूप प्रभु ने बताया कि कम से कम 3 साल की कथा चलेगी, 89 अध्याय में है पूरी कृष्ण कथा। तो विस्तार रूप से इसका कृष्ण कथा सुनकर उनका स्मरण करते हुए हमें अपने जीवन को लक्ष्य है जो प्राप्त करना चाहिए, और स्मरण करते हुए अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। धन्यवाद। तो विश्वरूप प्रभु वनमाले प्रभु सामने में अज्ञान के वश कुछ बोल गया, कुछ क्षमा हो तो क्षमा कीजिए, कुछ समझ कर हमें आपने क्षण प्रार्थना कर दो कि आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी कृष्ण चिंतन और कृष्ण भक्ति कर सके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अगर कोई प्रश्न है तो वनमाल प्रभु या विश्वर प्रभु से पूछ सकते हैं। किसी कोई जिज्ञासा है? धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।